एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और गहरी किताब पर बात करने वाले हैं।
कौन सी किताब?
रैब ह्यूस्टन की लिखी स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड, हाँ, नाम सुनते ही मतलब दिमाग में कुछ तस्वीरें सी आती हैं।
किल्ट्स पहने बहादुर योद्धा, बैगपाइप की गूंज, वो ऊंचे ऊंचे वीरान पहाड़ और हाँ, मेल गिब्सन की फिल्म ब्रेव हार्ट।
बिल्कुल, मतलब इंग्लैंड से आजादी की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई।
जी, और ज्यादातर लोगों के लिए स्कॉटलैंड की कहानी शायद वहीं तक सीमित रह जाती है।
सही कहा, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि ये तस्वीर अधूरी है और शायद थोड़े गलत भी।
अच्छा
जी, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है, कहीं ज्यादा दिलचस्प और आज के दौर के लिए बहुत जरूरी भी है।
जरूरी कैसे? मतलब आज के समय में ये क्यों प्रासंगिक है?
क्योंकि ये हमें सिखाती है कि एक राष्ट्र की, एक कौम की पहचान बनती कैसे है, वो बदलती कैसे है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदा कैसे रहती है। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि स्कॉटलैंड ने समय के साथ दुनिया में अपनी भूमिका और अपने होने के लक्ष्य को कैसे बार बार बदला।
ये सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है, बल्कि पहचान की एक लगातार खोज की कहानी है।
तो इस कहानी को सुनाने वाले लेखक रैब ह्यूस्टन के बारे में कुछ बताइए, उनका नजरिया इतना अलग क्यों माना जाता है?
रैब ह्यूस्टन स्कॉटलैंड की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सेंट एंड्रयूज में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं।
जी,
और उनकी खासियत ये है कि वो राजाओं और लड़ाइयों वाले इतिहासकार नहीं हैं। मतलब उनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि किस राजा ने कौन सा युद्ध जीता।
अच्छा, तो फिर उनकी दिलचस्पी किस में है? मतलब वो इस बात में ज्यादा रुचि रखते हैं कि उस युद्ध का एक आम किसान की जिंदगी पर क्या असर हुआ।
एकदम सही पकड़ा आपने।
या जब धर्म बदला तो एक आम बुनकल या मछुआरे की दुनिया कैसे बदल गई।
बिल्कुल, ह्यूस्टन एक सामाजिक और आर्थिक इतिहासकार हैं। उनका नजरिया नीचे से ऊपर देखने का है। वो पुराने दस्तावेजों, साक्षरता के आंकड़ों, व्यापार के रिकॉर्ड्स को खंगाल कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आम स्कॉटिश लोगों की जिंदगी असल में कैसी थी।
मतलब वो हमें विलियम वॉलेस जैसे फिल्मी हीरो की कहानियों से परे ले जाकर स्कॉटलैंड की असली आत्मा से मिलाते हैं, वो आत्मा जो शायद वहाँ के छोटे चर्चों में, गांव के स्कूलों में या फिर भीड़ भरे शहरों की गलियों में बसती थी।
बिल्कुल, और इसीलिए उनकी लिखी कहानी ज्यादा सच्ची और ज्यादा मानवीय लगती है। वो हमें मिथकों से हटाकर हकीकत के करीब लाते हैं।
तो फिर इस किताब का मेन आइडिया क्या है? अगर स्कॉटलैंड की कहानी सिर्फ इंग्लैंड से लड़ाई की नहीं है तो फिर है क्या?
किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि स्कॉटलैंड का इतिहास किसी एक सीधी लाइन में नहीं चला।
ओके।
और स्कॉटिश पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक कह सकते हैं बहुत लचीली चीज रही है, जिसे सिर्फ एक बाहरी दुश्मन यानी इंग्लैंड ने नहीं गढ़ा।
तो फिर और किन चीजों ने इसे गढ़ा?
उसके अपने अंदरूनी विभाजनों ने।
अंदरूनी विभाजन जैसे?
जैसे कि हाईलैंड्स और लोलैंड्स का टकराव। ये सिर्फ दो इलाके नहीं थे बल्कि दो अलग अलग दुनिया थी।
अच्छा।
एक तरफ गेलिक भाषा और कबीलाई संस्कृति, दूसरी तरफ स्कॉट्स भाषा और शहरी व्यापार। इसके अलावा धर्म को लेकर जो जुनून था और यूरोप के बाकी देशों के साथ स्कॉटलैंड के गहरे रिश्तों ने भी उसकी पहचान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये किताब दिखाती है कि स्कॉटलैंड कभी भी एक अकेली, एक जैसी आवाज नहीं रहा।
और इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो कौन सा आहा मोमेंट है जो पढ़ने वाले को हैरान कर देता है?
सबसे हैरान करने वाली बात 1707 के उस फैसले से जुड़ी है, जब स्कॉटलैंड ने अपनी संसद भंग कर दी और इंग्लैंड के साथ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना लिया।
मतलब उसने अपनी राजनीतिक आजादी छोड़ दी।
हाँ, और हैरानी ये है कि इसके बाद स्कॉटलैंड का स्वर्ण युग शुरू हुआ।
एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि अपनी संसद खोने के बाद स्कॉटलैंड का स्वर्ण युग शुरू हुआ? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है,
है ना?
आमतौर पर जब कोई देश अपनी राजनीतिक आजादी खो देता है तो उसकी पहचान, उसकी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ उल्टा कैसे हुआ?
यही तो इस किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। ह्यूस्टन बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कॉटलैंड ने अपनी संसद तो खोई लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोई।
और वो आत्मा कहाँ बसती थी?
वो बसती थी उसके मजबूत नागरिक संस्थानों में। उसका अपना अनोखा प्रेस्बिटेरियन चर्च, उसकी अपनी कानूनी व्यवस्था जो इंग्लैंड से बिल्कुल अलग थी, और उसका अपना शिक्षा का ढांचा।
अच्छा,
इन्हीं तीन स्तंभों ने स्कॉटिश पहचान को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। ये किताब इसी पहेली को सुलझाती है।
चलें तो फिर इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब स्कॉटलैंड एक देश के रूप में बस बन ही रहा था, तब उसका लक्ष्य क्या था?
किताब का पहला हिस्सा इसी बनने की प्रक्रिया को दिखाता है। ह्यूस्टन हमें बताते हैं कि शुरू में स्कॉटलैंड नाम की कोई चीज थी ही नहीं।
अच्छा,
वहाँ पिक्ट्स, स्कॉटी, ब्रिटन जैसे कई अलग अलग कबीले थे, सबकी अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज। 9वीं सदी में केनेथ मैकल्पिन जैसे कुछ नेताओं ने इन समूहों को एक दुश्मन वाइकिंग्स के खिलाफ एकजुट किया और अल्बा नाम का एक राज्य बनाया,
जो आगे चलकर स्कॉटलैंड बना।
जी, तो उस दौर में लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना था, बिखरे हुए कबीलों को जोड़कर एक शक्ल देना।
बिल्कुल, और इस काम में ईसाई चर्च ने कह सकते हैं गोंद की तरह काम किया।
हाँ, उसने इन अलग अलग समूहों को एक साझा पहचान और एक साझा विश्वास दिया।
फिर वो दौर आया जिसके बारे में सब जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, विलियम वॉलेस और रॉबर्ट द ब्रूस। यहाँ तो लक्ष्य साफ था, है ना? आजादी।
हाँ, लक्ष्य आजादी था, लेकिन ह्यूस्टन दिखाते हैं कि ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी,
तो फिर
ये विचारों की लड़ाई भी थी। इसी दौर में स्कॉटलैंड ने अपनी आजादी के हक को कानूनी और दार्शनिक तौर पर दुनिया के सामने रखा।
इसका कोई उदाहरण है?
सबसे बड़ा सबूत के 1320 का डिक्लेरेशन ऑफ एब्रोथ।
ये क्या था?
ये उस वक्त के पोप को लिखा गया एक खत था जिसमें स्कॉटलैंड के अमीरों ने अपनी आजादी का दावा किया था।
अच्छा,
और उसमें एक ऐसी बात लिखी थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने लिखा कि उनका राजा राज्य के समुदाय की सहमति से ही राज करता है।
क्या मतलब?
मतलब अगर राजा उनके हितों के खिलाफ काम करेगा तो वो उसे हटाकर किसी और को चुन लेंगे।
अरे वाह, मतलब वो 1320 में कह रहे थे कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं।
बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है।
कमाल की बात है। तो यहाँ स्कॉटलैंड का लक्ष्य सिर्फ आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जो सिर्फ राजा की मर्जी पर नहीं बल्कि एक समुदाय की इच्छा पर आधारित हो।
इसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, धर्म सुधार। लेखक के मुताबिक ये स्कॉटलैंड के चरित्र को बनाने वाली शायद सबसे बड़ी घटना थी।
हाँ,
इसने स्कॉटलैंड की भूमिका और लक्ष्य को कैसे बदल दिया?
इसने तो सब कुछ बदल दिया। जॉन नॉक्स नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में स्कॉटलैंड कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट बन गया। और वहाँ प्रेस्बिटेरियन चर्च की स्थापना हुई जिसे द किर्क भी कहते हैं।
और ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका बदलना नहीं था?
नहीं, ये एक सामाजिक क्रांति थी। किर्क ने स्कॉटलैंड को एक नया लक्ष्य दिया, एक ईश्वरवादी राष्ट्रमंडल बनना, एक ऐसा आदर्श समाज जो बाइबल के सिद्धांतों पर चले।
और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने क्या किया?
उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। किर्क का मानना था कि हर इंसान को बाइबल पढ़नी आनी चाहिए।
सही बात है।
इसके लिए उन्होंने हर गांव में एक स्कूल खोलने का अभियान चलाया। नतीजा ये हुआ कि 7वीं सदी तक स्कॉटलैंड यूरोप के सबसे पढ़े लिखे समाजों में से एक बन गया।
एक गरीब छोटा सा देश शिक्षा के मामले में बड़े बड़े देशों से आगे निकल गया।
जी, लेकिन इसी दौर में उनसे एक बहुत बड़ी गलती भी हुई है ना?
हाँ, पनामा में कॉलोनी बसाने की वो कोशिश, डेरियन स्कीम।
वो गलती बहुत महंगी पड़ी। वो स्कॉटलैंड का दुनिया में एक बड़ी व्यापारिक ताकत बनने का सपना था जो बुरी तरह नाकाम हुआ।
और इस स्कीम में देश की लगभग सारी जमा पूंजी डूब गई और देश कंगाल हो गया।
ओह, तो ये वजह थी आर्थिक तबाही।
हाँ।
और इसी ने 1707 के उस विलय की जमीन तैयार की जिसकी बात हम कर रहे थे। मुझे हमेशा लगता था कि एक फौजी कब्जा था।
नहीं,
लेकिन ये तो एक आर्थिक मजबूरी ज्यादा लग रही है।
ह्यूस्टन यही तर्क देते हैं, ये एक व्यवहारिक सौदा था। स्कॉटलैंड के नेताओं ने सोचा कि अनिश्चित राजनीतिक आजादी से बेहतर है कि इंग्लैंड के विशाल बाजार और साम्राज्य से जुड़कर आर्थिक सुरक्षा हासिल की जाए।
और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। राजनैतिक आजादी खत्म हुई पर स्कॉटलैंड का स्वर्ण युग,
हाँ, स्कॉटिश एनलाइटनमेंट,
वो शुरू हुआ।
दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर।
बिल्कुल, संसद गई पर एडम स्मिथ और डेविड ह्यूम आ गए।
बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, उनके नागरिक संस्थान बच गए थे,
चर्च, कानून और विश्वविद्यालय।
हाँ, इन संस्थानों में आजाद सोच की एक परंपरा थी। सारी ऊर्जा जो अब तक राजनीति में लगती थी वो अब दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र की तरफ मुड़ गई।
तो स्कॉटलैंड ने अपनी भूमिका फिर से बदली।
एक बार फिर अब वो एक आजाद राज्य नहीं था बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का बौद्धिक और औद्योगिक पावर हाउस बन गया। एडम स्मिथ ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी, डेविड ह्यूम ने दर्शन को नई दिशा दी,
और फिर आई औद्योगिक क्रांति जब ग्लासगो जैसे शहर साम्राज्य की वर्कशॉप बन गए।
हाँ, वहाँ जहाज बनते थे, ट्रीम के इंजन बनते थे जो पूरी दुनिया में जाते थे।
ये तरक्की का दौर था, लेकिन इसकी बहुत भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी।
हाईलैंड्स के गांवों से लोगों को भेड़े पालने के लिए उनकी जमीनों से जबरदस्ती निकाल दिया गया,
जिसे हाईलैंड क्लियरेंस कहते हैं।
और शहरों में भयानक गरीबी और गंदगी थी।
मतलब स्कॉटलैंड के दो चेहरे दिखते हैं, एक तरफ बेहिसाब दौलत और आविष्कार और दूसरी तरफ भयानक गरीबी।
और आखिर में 20वीं सदी आती है, ये बड़े बड़े उद्योग खत्म होने लगते हैं, बेरोजगारी फैलती है,
और फिर एक नई राजनीतिक चेतना जागती है।
ह्यूस्टन आधुनिक राष्ट्रवाद को इसी आर्थिक पतन से जोड़ते हैं।
अच्छा,
जब साम्राज्य और उद्योग वाली पुरानी पहचानें कमजोर पड़ने लगी तो स्कॉटिश लोगों ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
और 1970s के दशक में उत्तरी सागर में तेल की खोज ने,
हाँ, उसने आजादी के विचार को एक नया आर्थिक आधार दिया, इट्स स्कॉटलैंड्स ऑयल।
और कहानी 1999 में स्कॉटिश संसद की दोबारा स्थापना पर आकर रुकती है।
जी, जो दिखाती है कि अपनी भूमिका और अपने लक्ष्य की ये तलाश आज भी पूरी शिद्दत से जारी है।
इस पूरी चर्चा से जो एक बात बार बार उभर कर आ रही है वो ये है कि स्कॉटिश पहचान कोई एक ठहरी हुई फिक्स चीज नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये हमेशा बदलती रही है।
ये पानी की तरह है, जिसे जिस बर्तन में डालो वो उसी की शक्ल ले लेती है।
हाँ, कभी ये पहचान राजनीतिक थी जब वो आजादी के लिए लड़ रहे थे, फिर ये धार्मिक बन गई जब कर्क समाज का केंद्र था।
18वीं सदी में ये बौद्धिक और सांस्कृतिक बन गई,
और आज ये एक नागरिक और राजनीतिक पहचान है।
ये कुछ कुछ भारत जैसा है ना, हमारी भी तो पहचान के कई स्तर हैं।
बिल्कुल, कोई पंजाबी भी है और भारतीय भी, कोई तमिल भी है और भारतीय भी।
एक पहचान दूसरी को खत्म नहीं करती। स्कॉटलैंड की कहानी यही दिखाती है कि पहचान कितनी लचीली हो सकती है।
दूसरा बड़ा विषय है धर्म की भूमिका। हम आज अक्सर धर्म को एक समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन चर्च ने 300 साल तक समाज को एक नैतिक अनुशासन और शिक्षा का एक मजबूत ढांचा दिया।
और वो अंदरूनी टकराव, हाईलैंड्स बनाम लोलैंड्स,
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश को एक ही रंग में नहीं देखना चाहिए। हर देश के अंदर अपनी विविधताएं और अपने तनाव होते हैं।
सही बात है। और आखिर में इंग्लैंड के साथ वो पेचीदा रिश्ता,
ये सिर्फ शिकारी और शिकार जैसा रिश्ता नहीं था।
नहीं, इंग्लैंड दुश्मन भी था जिसके डर ने स्कॉटलैंड को एकजुट किया, और इंग्लैंड एक पार्टनर भी था जिसके बाजार ने स्कॉटलैंड को अमीर बनाया।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई दिमाग में अटक जाती हैं। सीधे सीधे कोट्स तो नहीं, पर लेखक के वो तर्क जो पूरी कहानी का निचोड़ हैं।
हाँ, जैसे फैलाओ सबसे अहम विचार यही है, स्कॉटिश पहचान कोई बनी बनाई विरासत नहीं थी, बल्कि ये हर पीढ़ी द्वारा अपनी जरूरतों के हिसाब से गढ़ने और दोबारा बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी।
मतलब पहचान आपको मिलती नहीं, आप उसे बनाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा विचार 1707 के विलय के बारे में है, जो हमें इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देता है। इसे राष्ट्रीय गद्दारी की तरह देखने के बजाय एक व्यवहारिक सौदे की तरह देखा जाना चाहिए, जिसमें आर्थिक सुरक्षा को अनिश्चित राजनीतिक आजादी पर तरजीह दी गई।
यह हमें सिखाता है कि इतिहास को आज के चश्मे से जज ना करें, बल्कि उस समय के हालात में समझने की कोशिश करें।
और तीसरा विचार, जो मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली है, वो संस्थानों की ताकत के बारे में है।
क्या है वो?
विलय के बाद अपने अनोखे कानूनी, धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों को बचाए रखना ही वो चाबी थी जिसने स्कॉटलैंड को बिना अपनी सरकार के भी बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से जिंदा रखा और फलने फूलने दिया।
ये दिखाता है कि एक राष्ट्र सिर्फ अपनी सरकार से नहीं, बल्कि समाज के अपने ढांचे से जिंदा रहता है।
और एक आखिरी विचार जो आज की राजनीति को इतिहास से जोड़ता है। आज स्कॉटलैंड की आज़ादी की मांग सिर्फ सदियों पुरानी शिकायतों से पैदा नहीं हुई है, बल्कि इसकी जड़ें 20वीं सदी में उद्योगों के पतन और साम्राज्य खत्म होने के बाद दुनिया में अपने लिए एक नए मकसद की तलाश में है।
तो इस किताब से मिली सीख को हम आज की दुनिया में या अपने समाज को समझने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो यही है कि पहचान के कई स्तर होना एक सामान्य और अच्छी बात है। एक व्यक्ति स्कॉटिश और ब्रिटिश दोनों महसूस कर सकता है, वैसे ही जैसे कोई बंगाली और भारतीय दोनों हो सकता है। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि एक को चुनने के लिए दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा।
दूसरी बड़ी सीख है नागरिक समाज की ताकत।
हाँ,
स्कॉटलैंड की कहानी दिखाती है कि जब राजनीतिक ढांचा कमजोर हो या ना भी हो, तब भी समाज की अपनी संस्थाएं,
जैसे कि कानून व्यवस्था, अच्छे कॉलेज, आजाद मीडिया,
हाँ सामाजिक संगठन, ये किसी संस्कृति और पहचान को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं।
ये दुनिया भर के उन समुदायों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
और आखिर में आर्थिक बदलावों का सामना कैसे किया जाए?
बिल्कुल, स्कॉटलैंड ने खेती बाड़ी से लेकर भारी उद्योगों और फिर सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था तक का एक बहुत लंबा और अक्सर दर्दनाक सफर तय किया है।
उसकी कहानी उन सभी समाजों के लिए एक सबक है जो आज ग्लोबलाइजेशन और तकनीक के कारण आ रहे बड़े बदलावों से जूझ रहे हैं।
ये हमें सिखाती है कि इतिहास हमें कोई बना बनाया जवाब तो नहीं देता, लेकिन सही सवाल पूछने के लिए जरूरी समझ और संदर्भ जरूर देता है।
मेरे लिए इस चर्चा की सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी देश का इतिहास उन मिथकों और सरल कहानियों से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और दिलचस्प होता है
जो वो अपने बारे में बताता है।
सही कहा।
स्कॉटलैंड की कहानी जबरदस्त लचीलेपन की कहानी है, एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जिसने अपनी भूमिका और लक्ष्य को बार बार बदला लेकिन अपनी अलग पहचान को कभी नहीं खोया।
और मेरे लिए सबसे खास बात ये समझना है कि एक राष्ट्र सिर्फ उसकी सरकार या उसकी सीमाओं से नहीं बनता, ये उसके लोगों की साझा चेतना, उनकी संस्कृति और उनके संस्थानों का नतीजा है। और ये चेतना इतने बड़े राजनीतिक बदलावों को भी झेल सकती है और एक नए रूप में फिर से उभर सकती है।
आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है।
क्या?
जब कोई राष्ट्र अपनी पुरानी आर्थिक और राजनीतिक भूमिका खो देता है तो वो अपने भविष्य के लिए एक नया और सार्थक लक्ष्य कैसे खोजता है?
ये सवाल सिर्फ स्कॉटलैंड का नहीं है बल्कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में कई देशों के सामने है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।